नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खारिज क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करता है। नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाजरानी मार्गों को खुला और सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने श्री मसूद को ईद तथा नवरोज की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने इस त्योहार के समय पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को कम करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सैन्य अभियानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं। इस सप्ताह ईरान के महत्वपूर्ण गैस क्षेत्र पर इसराइल के हमले के बाद ईरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़ी एलएनजी संयंत्र को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इस हमले से गैस और तेल की कीमतें बढ़ गईं और डोनाल्ड ट्रंप को सैन्य कार्रवाई कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर ईरान की अधिकांश बिजली की जरूरतें पूरी करने वाले गैस क्षेत्र पर हमले बंद करने की घोषणा की है। अमेरिका ने 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की भी घोषणा की है। इस निर्णय का उद्देश्य पहले से उपलब्ध तेल आपूर्ति को जारी करके वैश्विक बाजारों को स्थिर करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कई क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी हमले न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच संभावित ऊर्जा और खाद्य संकट पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब तक इस तरह के संकट से बहुत हद तक सुरक्षित है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि संवाद और कूटनीति के जरिए पश्चिम एशिया संघर्ष का समाधान निकाला जाना चाहिए।
भारत ने पक्ष को रखते हुए कहा, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा, उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था और पारिस्थिति के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर देहरादून में एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए विज्ञान आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है। उन्होंने संरक्षण प्रयासों में प्रकृति प्रथम दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाकर ही पृथ्वी को रहने योग्य बनाया जा सकता है। श्री यादव ने बताया कि देश का वन क्षेत्र 2014 की तुलना में 13,669 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। कोवलम से TN सुरेश, पीरुमाडे से वी राथेश, मावेलिकारा से अजीमन, अरुविकारा से विवेक गोपन और चावरा सीट से KR राजेश को टिकट दिया गया है। इस बीच पार्टी ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मन्ना दिपेट से A नमस्वयम, कलापेट से PML कल्याण सुंदरम, तिरुनल्लर से GNS राजशेखरन और माहे से A दिनेशन को उम्मीदवार बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों में नाम शामिल करने या हटाने से संबंधित अपीलों की सुनवाई के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन किया है। ये कदम राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया गया है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। सरकार ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। नए नियम का उद्देश्य अनुपालन को बढ़ाना और नियमों की संख्या कम करके कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला नोजोमी ओकुहारा से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में ईशारानी बरुआ और पिचमोन ओपाटनीपुत आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।